लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने जुलाई महीने के अपने अवकाश उपरांत 5 अगस्त को पुनः अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह की शुरुआत की। इस उपलक्ष्य में उन्होंने वैटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Molti sono i defunti, moltissimi malati in tutti i continenti.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। महामारी का दंश हमारी संवेदनशीलता को उभारते हुए अब भी गहरे रूप में हमें चोटिल कर रहा है। हर महादेश में बहुत से लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग बीमार हैं। बहुतेक लोग और परिवार अनिश्चितता की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि यह सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जिसके शिकार विशेष रूप से अति गरीब हुए हैं। महामारी की इस परिस्थिति में हम अपनी निगाहें यीशु की ओर टिकाए रखते हुए विश्वास में बने रहते मुक्ति की आशा करते हैं, जिसे स्वयं यीशु ख्रिस्त हमारे लिए लेकर आते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Un regno di guarigione e di salvezza che è già presente in mezzo a noi. Un regno di giustizia e di pace che si manifesta con opere di carità che a loro volta accrescono la speranza e rafforzano la fede.
चंगाई और मुक्ति का राज्य हमारे बीच उपस्थित है। न्याय और शांति का राज्य हमारे लिए करुणा के कार्यों में परिलक्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम विश्वास और आशा में बढ़ते हैं। विश्वास, भरोसा और प्रेम ख्रिस्तीय रीति के अनुरूप अपने में भावनाओं या मनोभावों से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारे लिए पवित्र आत्मा की ओर से प्रेषित कृपाएं हैं, वे कृपाएं जिनके द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते और दूसरों को चंगाई प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह नए क्षितिज को हमारे लिए खोलती है। यद्यपि हम अपने जीवन में कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे होते हैं, विश्वास, भरोसा और प्रेम का नवीकृत सुसमाचार हमें पुनः इस बात हेतु निमंत्रण देता है कि हम अपने को ईश्वरीय कृपा में नवीन करें। इस भांति हम अपने शारीरिक बीमारी और विध्वंसकारी शक्ति की जड़ों में परिवर्तन ला सकेंगे, जो हमें एक दूसरे से अलग करती, मानव परिवार और हमारी पृथ्वी को भयभीत करती हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यीशु ख्रिस्त के प्रेरितिक कार्य हमें चंगाई के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे बीमारों को चंगाई प्रदान करते, कोढ़ी को शुद्ध करते, अर्धांग रोगी को चंगा करते, अंधे को दृष्टि प्रदान करते हैं। वे वास्तव में न केवल शारीरिक बुराई को दूर करते, वरन संपूर्ण व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। इस भांति वे व्यक्ति को समुदाय से संयुक्त करते और व्यक्ति को अकेलेपन की गुलामी से मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम कफरनहूम में यीशु द्वारा अर्धांग रोगी की चंगाई एक सुंदर वृतांत पर चिंतन करें। यीशु घर के प्रवेश द्वार से शिक्षा दे रहे होते हैं। 4 व्यक्ति एक कोढ़ी व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आते हैं। लोगों की भारी भीड़ के कारण वे यीशु के निकट नहीं पहुंच सके, अतः वे घर की छत को खोलते और यीशु के सामने उस व्यक्ति की चारपाई को उतारते हैं। उनके विश्वास को देखकर यीशु उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और इसके साथ ही वे इसे दृश्यमान निशानी बनाते और कहते हैं, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। संत पापा ने कहा,
Che meraviglioso esempio di guarigione. L'azione di Cristo è una diretta risposta alla fede di quelle persone.
हम कितने आश्चर्यजनक चंगाई को देखते हैं। यीशु के कार्य सीधे तौर पर उन लोगों के विश्वास का प्रतिउत्तर है जिसे वे यीशु के ऊपर प्रकट करते हैं, जिसे वे अपने प्रेम स्वरूप एक दूसरे के लिए व्यक्त करते हैं। यीशु चंगाई प्रदान करते और वे केवल साधारण रूप में कोढ़ग्रस्त को चंगाई प्रदान नहीं करते, अपितु उसके पापों को क्षमा करते हैं। वे कोढ़ग्रस्त व्यक्ति और उसके मित्रों को नया जीवन देते हैं। यह शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई है जहां हम व्यक्तिगत और सामाजिक संपर्क को पाते हैं। हम यहां इस बात पर विचार करें कि किस भांति उनकी मित्रता और वहां उपस्थित लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी हुई होगी। हम यीशु ख्रिस्त के कार्यों हेतु कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उस चंगाई द्वारा यीशु का साक्षात्कार लोगों से हुआ। संत पापा ने कहा,
In che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi?
हम किस तरह हमारी दुनिया को चंगाई प्रदान कर सकते हैं? यीशु ख्रिस्त के शिष्यों स्वरूप शरीर और आत्मा के चिकित्सकों की भांति हम उनकी चंगाई और मुक्ति के कार्यों को शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाने हेतु बुलाए गए हैं। यद्यपि कलीसिया ख्रिस्त के चंगाई रूपी कृपा को संस्कारों के माध्यम संचालित करती है, तथापि वह अपने कार्यों को स्वास्थ्य सेवा के रूप में पृथ्वी के सुदूर स्थानों में करती। वह अपने में महामारी की रोकथाम या उसकी चंगाई हेतु कोई विशेषज्ञ नहीं है। वह बीमारों की सेवा करती, लेकिन वह अपने में कोई सिद्ध हस्त नहीं है। यह कार्य राजनीति और सामाजिक नेताओं का है। फिर भी सदियों से सुसमाचार के प्रकाश में कलीसिया ने कई मूलभूत सामाजिक सिद्धांतों की खोज की है। वे सिद्धांत जो हमें जरूरत की स्थिति में भविष्य में आगे बढ़ने को मदद करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यहाँ मैं मुख्य रूप से कुछ एक का जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे जीवन के अंग हैं। मानव सम्मान, जन सामान्य हित, गरीबों हेतु विकल्प, वस्तुओं की सार्वभौमिक उपलब्धता, एकात्मकता, आर्थिक सहायता और हमारे सामान्य गृह की सुरक्षा इत्यादि। ये सारे सिद्धांत हमारे संचालकों, समाज के प्रति उत्तरदायी लोगों को महामारी के समय में व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में चंगाई प्राप्ति हेतु हमारी मदद करने में सहायक होते हैं। ये सारे सिद्धांतों में हम विश्वास, भरोसा और प्रेम के गुणों को व्यक्त होता पाते हैं। संत पापा ने कहा,
Nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme le questioni pressanti che la pandemia ha messo in rilievo. Soprattutto le malattie sociali.
मैं आने वाले सप्ताहों में आपको इस बात हेतु निमंत्रण देता हूँ कि आप महामारी से उठे सवालों, सामाजिक बीमारियों का सामना एक साथ मिलकर करें। हम सुसमाचार के आलोक में ईश शास्त्रीय गुणों और कलीसियाई सामाजिक शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ऐसा करें। ऐसा करने के द्वारा हम यह जान पाएंगे कि कलीसिया की सामाजिक रीतियों द्वारा मानव परिवार दुनिया में व्याप्त गंभीर बीमारियों की चंगाई में किस भांति कारगर सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि मेरी चाह यही है कि हम इस बात का चिंतन करते हुए एक साथ मिलकर कार्य करें। ख्रिस्त के अनुयायियों के रूप में हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें, भविष्य की पीढ़ी हेतु नई आशा को बनाए रखें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
कहता तुझे बस शुक्रिया।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। बुधवार 5 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस ने अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह को फिर से शुरू किया, जिसे उन्होंने पूरे जुलाई महीने में निलंबित कर दिया था। साप्ताहिक आम दर्शन समारोह स्थानीय रोम समय अनुसार 9:30 बजे शुरू होती और लगभग 1 घंटे तक चलती है। आम दर्शन समारोह के बाद संत पापा फ्रांसिस कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं। 7 मार्च को अंतिम आम दर्शन समारोह के बाद वाटिकन ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के उपायों के अनुपालन करते हुए संत पेत्रुस महागिरजाघर प्रांगण से प्रेरितिक भवन के पुस्तकालय में आम दर्शन समारोह को स्थानांतरित किया था। आज संत पापा फ्रांसिस ने अपना संदेश देने के बाद बेरूत में कल 4 अगस्त को हुए बड़े विस्फोट की याद करते हुए लेबनान वासियों, विशेषकर पीड़ितों और उनके संबंधियों के लिए प्रार्थना की अपील की। संत पापा ने संदेश में कहा, कल बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्फोटों में दर्जनों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए और कई भवनों एवं संपत्ति की भारी क्षति हुई है। हम पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लेबनान के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अपने सभी सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक घटकों की प्रतिबद्धता के साथ इस दुखद और दर्दनाक क्षण का सामना कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से इस गंभीर संकट से उबर सकें। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली बम धमाके से कम 100 लोगों की जाने चली गई और 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उस धमाके के केंद्र में एक वेयर हाउस है। बताया जा रहा है कि इस वेयर हाउस में पिछले 6 साल से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जमा था, जिसमें धमाका हो गया। समाचार एजेंसी AFP की एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि आसपास के सभी इमारतें ध्वस्त हो गई, चारों तरफ शीशे और मलबे बिखरे पड़े हैं। धमाके की आवाज पूर्वी मध्य सागर में भी 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई पड़ी। उधर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में संत पापा के उदार पहलों को बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है, जो समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले वाटिकन के विभाग के तहत काम कर रहा है। 29 और 30 जुलाई को आयोजित ऑनलाइन वार्षिक बैठक के दौरान पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो फाउंडेशन के निदेशक मंडल ने कई प्रस्तावों में से 138 सामाजिक विकास परियोजनाओं का चयन किया, जो लैटिन अमेरिकी कैरेबियन समुदायों और सबसे जरूरतमंद क्षेत्रों की विकास परियोजनाएं हैं। इनके अलावा पहले से ही संचालित 30 खाद्य सहायता परियोजनाएं जून में निदेशक मंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित की गई थी। संत पापा फ्रांसिस द्वारा फाउंडेशन और वाटिकन कोविड-19 आयोग के बीच सहयोग के रूप में एक अनुरोध के जवाब में था, जिसे संत पापा ने रोमन कुरिया और अन्य एजेंसियों के सहयोगों के साथ मिलकर मार्च में नया विभाग स्थापित किया था। 23 देशों की 168 परियोजनाएं पूरे मानव परिवार में चल रही महामारी के प्रति कलीसिया के चिंता और प्रेम को व्यक्त करती हैं। आभासी बैठक में विभाग के प्रीफेक्ट और फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टर्कसन ने धन्यवाद दिया और सदस्यों को उन लोगों की ओर से समर्पण और उत्साह के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें इस कठिन परिस्थितियों में उनके समर्थन की आवश्यकता है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे प्रभावी उपचारों की शिनाख्त करने में काफी हद तक प्रगति हुई है, जिनके जरिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं और इनमें से अनेक वैक्सीन अपने परीक्षण के तीसरे चरण पर हैं। फिलहाल कोई सटीक औजार उपलब्ध नहीं हुआ है और शायद भविष्य में भी न मिल पाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में महामारी को रोकने के लिए इस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य और बीमारी पर काबू पाने के बुनियादी उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है। परीक्षण, मरीजों का एकांतवास में रखना और देखभाल, उनके संपर्क में आए लोगों की खोज और उन्हें अलग रखना, यह सब कुछ समुदायों को जानकारी देना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए शारीरिक दूरी बरतना, मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और खांसते समय दूसरों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। मास्क वायरस पर काबू पाने का एक अहम औजार है, लेकिन यह एकजुटता का भी परिचायक है। मास्क पहनकर आप एक ताकतवर संदेश दे रहे होते हैं कि आप सब इसमें एक साथ हैं। और 4.8 मिलियन से अधिक मामलों के साथ अमेरिका आज संक्रमण की कुल संख्या की सूची में सबसे आगे है। इसके बाद ब्राजील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको आते हैं। वायरस के प्रसार से लड़ने की मुख्य विधि के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष रूप से एशिया में बनाए रखना मुश्किल है। एशिया करीब 4.6 बिलियन लोगों का घर है। दुनिया की आबादी में से 60% लोग एशिया में रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। बुधवार 5 अगस्त तक भारत में 19,08,254 मामले दर्ज किए गए और 39,795 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ देश मानसूनी लगातार बारिश के कारण विभिन्न राज्यों में बाढ़, भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।